नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। श्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये पहली शिखर बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
भारत और जापान की दोस्ती का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने पिछले 12 वर्षों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों देशों के बीच 22 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता को और मजबूत करेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोकियो।
इसके बाद प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट का लोकार्पण किया। ये संयंत्र 7600 करोड़ रूपये के निवेश से स्थापित हुआ है। श्री वैष्णव ने इसे देश की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
भारत के नौजवानों की बहुत बड़ी ये स्ट्रेंथ बनने वाली है, भारत की पूरे टेक्निकल इकोसिस्टम में। आज भारत एक उभरता हुआ सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और इसमें गुजरात का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गुजरात ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के साथ साथ उसका बहुत रैपिड एग्जीक्यूशन भी किया।
भारत और बांग्लादेश समन्वित गश्त और सतर्कता बढ़ाने जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 4 दिन के सीमा सम्मेलन के समापन पर जारी एक संयुक्त बयान में ये सहमति बनी है। दोनों बलों ने तस्करी, अवैध घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर जोर दिया है। मुंबई के विरार में कल देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 घायल हुए। दमकल विभाग ने अब तक मलबे से 24 लोगों को बचाया है। जिलाधिकारी इंदुरानी जाखड़ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि एनडीआरएफ, पुलिस और नगर निगम की निगरानी में बचाव अभियान जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। राज्य के आपदा मंत्री श्री गिरीश महाजन ने घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की समीक्षा की। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि इस साल जुलाई में बढ़कर 3.5% हो गई, जबकि जून में ये 1.5% थी। पिछले साल इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई थी। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पार्टी महासचिव डी राजा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनके सुझाव लिए। ये बैठक आयोग के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ चल रही बातचीत के क्रम में है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों और अर्धकुंवारी में हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 3रे दिन भी स्थगित है। इस त्रासदी में कई लोगों की जाने गई और कई घायल हो गए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से यात्रा को स्थगित करने का आग्रह किया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 706 गिरकर 80,080 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 211 घटकर 24,500 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।